आदिनाथ ऋषभ देव भगवान की भक्ति में अनेक महान आत्मा लीन होती रही, उनके बताए मोक्ष मार्ग पर चलती रही। उनमें से एक थे आचार्य श्री मानतुंग आचार्य। उनके भक्ति ध्यान की अग्नि परीक्षा हुई। राजा हर्षदेव ने अपने दरबारी पंडितों की प्रेरणा से उन्हें राज दरबार में बुलाया। उन्हें जैन धर्म का, जिन भक्ति का सामर्थ्य बताने को कहा और उन्हें 48 कड़ियों वाली श्रृंखला पहनाकर कारागार में कैद कर दिया गया और बड़े बड़े ताले लगा दिए गए। भगवान आदिनाथ की भक्ति में लीन श्रीमान तुंगाचार्य मन, वचन तथा कर्मों से ध्यानबद्ध हुए। उनकी नाभि से फूटी भक्ति धारा अमरदायिनी कल्याण वाणी समग्र चेतना गा उठी। मानो आदिदेव की वाणी रूपी सरस्वती उनके कंठ में विराजी हो। भक्त को अमर बनाने वाला नूतन स्तोत्र प्रारंभ हुआ। आत्मज्ञान से भक्ति गाथा विकसित होने लगी और इधर उनके शरीर पर पड़ी हुई एक एक श्रृंखला टूटने लगी। कारागार की चारों दीवारें गायब हो गई। महाभक्त मानतुंग आचार्य ने पाया सामने पवित्र सिद्ध भूमि की चोटी, जिस पर विराजमान देवा आदिदेव भगवान ऋषभदेव। झुकते हुए देवों के मुकुटों की रत्न कांति को दीप्तिमान करते हैं, पाप अंधकार को दूर करते हैं तथा कर्म युग के प्रारंभ में संसार समुद्र में भटकने वाली जनता की रक्षा करने वाले हैं, ऐसे जिनेन्द्र भगवान के चरणों को प्रणाम करके मैं भी उस आदिनाथ भगवान की स्तुति करता हूं, जिनका स्तवन समस्त शास्त्रों के जानकार परम बुद्धिमान इंद्रों ने त्रिलोकवर्ती जीवों का मन मोहित करने वाले बड़े सुंदर स्त्रोत से किया है।
जना सहसा ग्रहित
विद्वानों द्वारा पूज्य चरण भगवन, मैं आपकी स्तुति करने योग्य बुद्धि न रखता हुआ भी लज्जा छोड़कर आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ हूं। जैसे पानी में प्रतिबिंब चंद्रमा को बच्चे के सिवाय अन्य कोई बुद्धिमान मनुष्य पकड़ना चाहता है, कोई नहीं। हे कुल सागर प्रभु, आपके चंद्र समान उज्ज्वल गुणों को बृहस्पति के समान बुद्धिमान विद्वान भी अपनी बुद्धि से नहीं कह सकता। जैसे कि प्रलय समय की प्रबल वायु से उद्वेलित मगरमच्छों से भरे हुए समुद्र को अपनी भुजाओं से कौन पार कर सकता है, यानी कोई भी नहीं।
तो हम तथापि तव भक्ति वशा मुनीषा कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवत्ता प्रीत्यात्म वीरम विचार मृगो मृगे
भगवन। फिर भी शक्तिहीन मैं भक्तिवश आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। जिस तरह सिंह द्वारा पकड़े गए अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए बच्चे के मोहवश अपनी अल्प शक्ति का विचार न करके हिरने सिंह का सामना करने के लिए जा पहुंचती है, भगवन मैं बुद्धिमानों के उपहास करने योग्य अल्पज्ञ हूं, फिर भी आपकी भक्ति ही मुझे आपका स्तवन करने को प्रेरित करती है। वसंत ऋतु में जो कोयल मीठी वाणी बोलती है उसका कारण आम के वृक्षों पर आने वाला बौरी होता है।
तत्संस्तवेन भव संतति सन्निबाधं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीर भाजं आक्रांत लोक मलिनीलमशेष माशु सूर्याशु भिन्नमिव शा
आपकी स्तुति करने से जीवों के अनेक भवों के संचित पाप कर्म क्षण भर में क्षय हो जाते हैं। जैसे कि प्रातः समय सूर्य की किरणों से भौरे की तरह काला जगत में फैला हुआ रात्रि का अंधकार तत्काल छिन्न भिन्न हो जाता है। हे नाथ, आपके स्तवन की ऐसी महिमा मानकर मैं अल्पबुद्धि भी आपकी स्तुति प्रारंभ करता हूं। आपके प्रभाव से यह स्तुति सत्पुरुषों का चित्त आकर्षित करेगी, जैसे कमल के पत्ते पर पड़ी हुई पानी की बूंद मोती सरीखे शोभायमान होती है। प्रभो, सर्व दुख दोष नाशनी, आपकी स्तुति की बात ही क्या है। केवल आपका नाम लेना भी जगत के पाप नष्ट कर डालता है। जिस तरह सूर्य बहुत दूर रहता हुआ भी प्रकाश करता है, तथा कमलों के वन में कमल के फूलों को विकसित कर देता है, हे जगत भूषण जगदीश्वर, संसार में जो भक्त पुरुष आपके गुणों का कीर्तन करके आपका स्तवन करते हैं, वे आपके समान भगवान बन जाते हैं। इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है, क्योंकि वह स्वामी भी किस काम का जो कि अपने दास को अपने समान ना बना सके, सदा दास ही बनाए रखे।
दुधि दुग्ध सिंधो
टकटकी लगाकर आपके दर्शन कर लेने पर मनुष्य के नेत्र अन्य किसी को देखने में संतुष्ट नहीं होते, जिस तरह चंद्र समान उज्ज्वल क्षीर सागर का मीठा जल पीकर खारे समुद्र का खारा पानी कौन पीना चाहता है, अर्थात कोई नहीं। हे त्रिजगत के अलंकार, जिन शांतिमय प्रमाणुओं से आपके शरीर का निर्माण हुआ, संसार में वे परमाणु केवल उतने ही थे। इसी कारण आपके समान शांत वीतराग रूप और किसी देव का नहीं दिखाई देता। नर असुर के नेत्रों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले समस्त जगत में अनुपम आपके मुख मंडल की बराबरी चंद्रमा कहां कर सकता है, जिसमें के काला लांछन लगा हुआ है तथा जो दिन के समय ढाक के पत्ते की तरह कांतिहीन हो जाता है। हे भगवान, पूर्ण चंद्र समान उज्ज्वल आपके गुण तीन लोकों को भी लांघ गए हैं, सो ठीक ही है। जो एक त्रिलोकीनाथ के ही आश्रय रहे, उनको अपनी इच्छा अनुसार विहार करते हुए कौन रोक सकता है, कोई नहीं। इसमें क्या आश्चर्य की बात है कि सुंदरी देवागणाओं के हाव भाव देखकर भी आपका मन जरा भी विकृत नहीं हुआ। क्योंकि प्रलय काल की जिस प्रबल वायु से अन्य पर्वत चल विचल हो जाते हैं, उस वायु से क्या कभी मंदराचल का शिखर भी चलायमान होता है? कभी नहीं। हे त्रिभुवन दीपक, साधारण दीपक तो तेल और बत्ती से चलता है, धुआं देता है, थोड़े स्थान में प्रकाश करता है और वायु के झकोरे से बुझ जाता है। परंतु आप ऐसे अनोखे दीपक हैं कि ना तो आपको तेल और बत्ती की आवश्यकता होती है, ना आपसे काला धुआं निकलता है और ना पर्वतों को भी हिला देने वाली वायु से आपकी ज्योति बुझ सकती है, तथा आप तीनों लोगों को अपनी ज्योति से प्रकाशित कर देते हैं। आप सूर्य से भी अधिक महिमाशाली हैं, क्योंकि आप ना तो कभी अस्त होते हैं, ना राहु के ग्रहण में आते हैं और ना बादल आपका प्रभाव रोक सकते हैं, तथा आप अपनी ज्ञान ज्योति द्वारा एक साथ तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं। सूर्य तो चार पहर पीछे अस्त हो जाता है, उसका राहु ग्रहण कर लेता है, बादलों से उसका प्रकाश रुक जाता है, तथा वह प्रकाश भी सीमित क्षेत्र में करता है। हे भगवान, महाकांतिमान आपका मुख कमल अपूर्व अद्भुत चंद्रमंडल की तरह शोभित हो जाता है, क्योंकि वह सदा उदयमान रहता है, कभी अस्त नहीं होता। मोह अंधकार को नष्ट करता है, राहु और बादलों से कभी छिपता नहीं है और समस्त जगत को प्रकाशित करता है।
निष्पन्न शाली वन शालिनी जीवलोके
आपके मुख चंद्र द्वारा जब जनता का मोह अज्ञान अंधकार नष्ट हो गया तो दिन के समय सूर्य और रात्रि के समय चंद्रमा से कुछ प्रयोजन नहीं रहा। धान के पक जाने पर संसार में जल से भरे हुए बादलों की क्या आवश्यकता है। हे प्रभु, जैसा पूर्ण ज्ञान आप में विद्यमान है वैसा हरिहरादि अन्य किसी में नहीं है। जिस तरह की महत्वपूर्ण कांति रत्नों में होती है वैसी कांति चमकीले कांच के टुकड़ों में नहीं मिलती। ऐसा समझता हूं कि मैंने हरिहर आदि देवों के दर्शन किए सो अच्छा हुआ, क्योंकि उनके देख लेने पर मेरा मन आप में संतुष्ट हो गया। आपके दर्शन करने पर वैसा कुछ न हुआ, क्योंकि फिर कोई भी अन्य देव मेरा मन अपनी ओर आकर्षित ना कर सका। हे देव, संसार में सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्र पैदा करती हैं, परंतु आपके समान पुत्र को आपकी माता ही उत्पन्न करती है, अन्य कोई माता उत्पन्न नहीं कर सकती। जैसे प्रभा पुंज सूर्य की किरणों को तो सभी दिशाएं धारण करती हैं, परंतु उस सूर्य का उदय केवल पूर्व दिशा ही किया करती है।
Thank you.
ज्ञानीगण आपको महान पुरुष, अंधकार हारक निर्मल सूर्य कहते हैं। मुनिगण आपकी उपासना करके मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। आपकी उपासना के सिवाय अन्य कोई मोक्ष का सुखदायी मार्ग भी तो नहीं है। हे स्वामिन, गणधरादिक आपको अविनाशी ज्ञान द्वारा सर्वव्यापक, अचिंत्य, असंख्य, समस्त पूज्य देवों में प्रथम ब्रह्म, ईश्वर, अनंत, अंग केतु, योगेश्वर, योग ज्ञाता, गुणों की अपेक्षा अनेक, आत्मा की अपेक्षा एक, ज्ञान रूप और पूर्ण निर्मल कहते हैं। आप ही बुद्ध हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि का ज्ञान गणधर आदि विद्वानों तथा इंद्र आदि से पूछनीय है। आप ही यथार्थ शंकर हैं, क्योंकि आप अपनी प्रवृत्ति तथा उपदेश से तीनों लोकों में शांति कर देते हैं। हे धीर, आप ही सच्चे विधाता हैं, क्योंकि आपने मुक्ति मार्ग का विधान किया है और आप ही सबसे उत्तम होने के कारण पुरुषोत्तम हैं। हे जिनेंद्र देव, हे नाथ, तीन लोक के संकटों को दूर करने वाले आपको मैं नमस्कार करता हूं। जगत के निर्मल अनुपम आभूषण स्वरूप आपको मैं प्रणाम करता हूं। तीन जगत के स्वामी, तुम्हें प्रणाम है, और संसार समुद्र के सुखाने वाले आपको नमस्कार है।
भवतो नीता
ईश्वर, इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं कि आप समस्त गुणों से परिपूर्ण हैं। राग द्वेष, काम क्रोध, मान माया लोभ आदि दोष अन्य देवों का आश्रय पाकर घमंडी हो गए हैं, अतः वे दोष आपके पास कभी स्वप्न में भी नहीं आते। हे भगवन, ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे आपका निर्मल कांतिमान शरीर बहुत शोभा देता है, जैसे कि अंधकार नष्ट करके किरण सहित सूर्य बिंब बादलों के पास शोभित होता है। पन्ना, लाल, नीलम, पुखराज आदि अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ित सिंहासन पर आपका स्वर्ण समान शरीर बहुत शोभा पाता है, जैसे उन्नत उद्याचल के शिखर पर फैली हुई अपनी किरणों के साथ सूर्य का बिंब शोभित होता है। हे प्रभो, इंद्रों द्वारा कुंद पुष्प के समान सफेद चमर आप पर ढूंढते समय आपका तपे हुए सोने के समान शरीर ऐसा शोभायमान होता है जैसे चंद्र समान निर्मल जल की धारा से स्वर्णमय सुमेरु पर्वत का ऊंचा तट सुशोभित होता है।
हे
ईश, चंद्रमा समान कांतिमान सूर्य की धूप को रोकने वाले मोतियों की झालर से शोभायमान आपके ऊपर ऊंचे लगे हुए तीन छत्र आपके तीन जगत की प्रभुता को प्रकट करते हुए बहुत शोभा देते हैं। हे परमात्मन, आकाश में अपने गंभीर तेज मधुर ध्वनि द्वारा समस्त दिशाओं को शब्दायमान करके त्रिलोकवर्ती जीवों को शुभ संगम कराने वाला आपकी जय ध्वनि करता हुआ आपके यश को घोषित करने वाला आपका प्रातिहार्य रूप दुंदुभी बाजा बजता है। सुगंधित जल बिंदुओं और मंद पवन के साथ मंदार नमेरु पारिजात आदि कल्प वृक्षों के पुष्पों की मनोहर वर्षा आपके ऊपर देवों के द्वारा आकाश में ऐसी होती है मानो पक्षियों की पंक्ति ही है। हे भगवान, आपके शरीर से निकली हुई कांति का गोलाकार मंडल यानी भामंडल जगत के सभी प्रकाशमान पदार्थों की कांति को फीका कर देता है। करोड़ों सूर्यों के एकत्रित प्रकाश से भी अधिक प्रकाशमान भामंडल की प्रभा से चांदनी रात भी फीकी हो जाती है। परमदेव, आपकी दिव्य वाणी स्वर्ग मोक्ष का मार्ग बताने वाली तथा जगत के लिए हितकर सत धर्म, सात तत्व, नौ पदार्थ आदि का यथार्थ विशद कथन करने वाली एवं श्रोताओं की भाषामयी होती है। हे जिनेंद्र, विहार करते समय विकसित स्वर्ण कमल की कांति को अपने चरणों के नखों की कांति से सुंदर कर देने वाले आपके चरण जहां पड़ते हैं वहां पर देव पहले ही स्वर्णमय कमल बनाते जाते हैं। प्रकार धर्म उपदेश देते समय अष्ट प्रातिहारे रूप जैसी विभूति आपकी होती है। इस तरह की विभूति अन्य किसी धर्म उपदेशक के उपदेश करते समय नहीं होती। ठीक है, जैसी अंधकार राशनी प्रभा सूर्य की होती है वैसे चमकते हुए भी तारों की नहीं होती। हे प्रभु, जिसके कपोल से झर रहे मत पर भौरे गूंज रहे हैं, अतः भौरों की गुंजार सुनकर जिसको प्रचंड क्रोध आ गया है, ऐसे मदोन्मत हाथी को भी देखकर आपके आश्रित भक्तों को जरा भी भय नहीं होता। हाथी के मस्तक को अपने नाखूनों से फाड़कर जिसने रक्त से भीगे गज मुक्ताओं से पृथ्वी सजा दी है तथा शिकार करने के लिए तैयार ऐसा विकराल सिंह अपने पंजों में आए हुए आपके चरणों की शरण लेने वाले मनुष्य पर आक्रमण नहीं करता है। हे भगवान, प्रलय समय जैसी तेज वायु से धधकती हुई वन की अग्नि, जिसमें के भयानक चिंगारे बहुत ऊंचे निकल रहे हो, ऐसी भयानक कि मानो सारे संसार को भस्म कर डालेगी, उसके सामने आ जाने पर हृदय में लिया हुआ आपका नाम रूपी जल तत्काल उसको बुझाकर शांत कर देता है। विश्वपते, उन्मत कोयल के कंठ के समान काला, क्रोध से उद्धत लाल नेत्र किए, फन को ऊंचा उठाए भयानक सर्प आक्रमण करे तो वह मनुष्य निश्चिंत बना रहता है, जिसके हृदय में आपके पवित्र नाम रूपी सर्प दमन करने वाली अमोध औषधि विद्यमान है। हे विश्व उद्धारक देव, जहां घोड़े भयानक हींस रहे हैं, हाथी चिंघाड़ रहे हैं, घमासान लड़ाई से उड़ती हुई धूल ने सूर्य का प्रकाश भी छिपा दिया है, ऐसी भयानक युद्ध भूमि में आपका स्मरण करने से बलवान राजाओं की सभी सेना ऐसे फट जाती है जैसे सूर्य उदय होने से अंधकार फट जाता है। विश्व विजेता, जिस युद्ध में भाले बर्छियों के द्वारा छिन्न भिन्न हाथियों के शरीर से निकले हुए रुधिर के प्रवाह को पार करने में बड़े बड़े शूरवीर योद्धा भी व्याकुल हो जाते हैं, ऐसे भयानक विकराल युद्ध में आपके चरणों की शरण लिए भक्त पुरुष दुर्जन शत्रु को भी जीत लेते हैं। हे तरण तारण देव, जहां भयानक नाकू मगर बड़े मच्छ आदि जलचर जीवों ने क्षोभ मचा रखा है तथा वड़वा अग्नि से जिसका जल बहुत गर्म हो गया है, ऐसे भयानक समुद्र में विकराल तूफान के समय आपका स्मरण करने से मनुष्य अपने जलयान को उठती हुई तरंगों के ऊपर से बिना किसी कष्ट के ले जाते हैं। अजरामर प्रभु, जलोदर रोग के कारण जो व्यक्ति पेट के भार से खेद भिन्न है, भयानक रोग के कारण जिनकी दशा शोचनीय है, जिनके जीवित रहने की आशा नहीं रही, ऐसे रोगी जन यदि आपके चरणों की धूल अपने शरीर से लगाते हैं तो वे निरोग होकर कामदेव के समान सुंदर हो जाते हैं। हे बंध विमोचन, जेल में जिनको पैर से कंठ तक भारी जंजीर में जकड़ दिया है, बड़ी बेड़ी की कोर से जिनकी जांघें छिल गई हैं, ऐसे मनुष्य आपके नाम को स्मरण करते हुए तुरंत स्वयं बंधन और भय से छूट जाते हैं। आपके इस स्तवन को पढ़ता है, उसके मदोन्मत हाथी, सिंह, प्रचंड अग्नि, सर्प, युद्ध, समुद्र, जलोदर आदि रोग तथा बंदी घर, हथकड़ी बेड़ी आदि के बंधन का भय स्वयं तत्काल डर कर नष्ट हो जाता है। हे जिनेंद्र, विविध वर्ण में आपके गुणों से गुथी हुई जो मैंने भक्ति से ये स्तुति रूपी माला बनाई है, जो पुरुष इसको अपने गले में सतत धारण करता है, उस उच्च ज्ञानी व्यक्ति को मुक्ति लक्ष्मी शीघ्र प्राप्त होती है।